आज के दौर में आप देखिए सारे ऐसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत रोशनी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो माहौल की धुंध में खो गए। ये नमाज और रोज़ा जिसकी अब हम बातें कर रहे हैं, ये हमें कुछ कामों के करने का मशवरा देता है। नमाज की तो हमने थोड़ी बात कर ली, इसलिए कि नमाज के बगैर तो रोज़ा भी नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए दौड़ धूप नहीं करते, अल्लाह के दीन को नाफिज करने की दौड़ धूप नहीं करते, तो सॉरी कि आपने नमाज की एनर्जी को मिसयूज़ किया। कितने लोगों को ये पता ही नहीं है कि नमाज से मिलता क्या है। वो कहते हैं और क्या करें, हम दूसरी भी नमाज का इंतज़ार ही करते हैं। देखिए नबी सल्लम का जहाँ तस्करा आता है ना, हमारा दिल मोहब्बत से भरता है। मुसलमान होने के नाते हम उनकी छोटी छोटी सुन्नतों पे बहुत तवज्जो देते हैं ना, देते हैं या देना चाहते हैं। रबीउल अव्वल आएगा तो हम बहुत मोहब्बत से उसकी बात करेंगे। मिसवाक की सुन्नत हमें अच्छी लगती है, तेल लगाने की सुन्नत अच्छी लगती है, खाने के बाद मीठा खाने की सुन्नत हमें बहुत ही अच्छी लगती है। पता नहीं वो है कि नहीं, लेकिन मशहूर है हमारे यहाँ, तो ठीक है मान लेते हैं। 100 सुन्नतों के नाम पे अक्सर किताबें भी हैं, छोटी छोटी सुन्नतें। ये सब सुन्नतें हैं इंडिविजुअल, हमारी जाती जिंदगी से मुतल्लिक, बहुत अच्छी हैं। आप करेंगे आपकी नमाज 1 की जगह 70 गुना बढ़ जाएगी, इट्स सो गुड, वेरी नाइस। आप फजर की सुन्नतों में पढ़ के थोड़ी देर लेट जाते हैं अपने करवट पे और दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा अजल फी कल्बी नूरन, वेरी नाइस, ये सुन्नतें हैं, इसका सरासर फायदा आपको पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह के नबी की मुस्तकिल सुन्नत है, दायमी सुन्नत है, एवर लास्टिंग सुन्नत है, वो क्या है? अल्लाह के नबी की कांस्टेंट सुन्नत क्या थी? जी पीछे से शाबाश। ये है तवासो बे सब्र और तवासो बिल हक। जब आप कहते हैं इन्नल्लज़ी ना मनु, ये आपका अपना ईमान है, नमाजें आपकी, आपकी रोजे बातें, हम सिर्फ आमनु के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए आए। शायद 3 दफा कुरान पाक में, एक दफा सूरत तौबा, एक दफा सूरत सफ है, एक और जगह है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक की लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्लिही। वो जात जिसने भेजा अपने रसूल को दीने हक के साथ, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हक के साथ भेजा, दीन इस्लाम के साथ भेजा, क्यों? ताकि लियुज़हिरहु, ताकि इस दीन को गालिब करे, अला दीनी कुल्लिही, सारे दीनों पे। और लव करिहल काफिरून व लव करिहल मुशरिकून, आगे लफ्ज़ फर्क है। अल्लाह के नबी ने जो काम 23 साल तक किया, नबुवत मिलने से लेकर बिस्तरे मर्ग तक, वो क्या था? दीन का निफास, लोगों की अमली जिंदगी में दीन आ जाए, चलते फिरते दीन के नुमाइंदे बन जाए, ये दुनिया में चले और ऊपर फरिश्ते कहें कि वाकई इस इंसान की तख्लीक में हिकमत थी, हम समझ नहीं पाए। और हमने ऐसी बात पूछ ली कि अल्लाह क्यों बनाता है तो उसको जो जमीन में फसाद करेगा। देखिए अगर सिर्फ तस्बीह होती, रोजा होता, नमाज होती, हज होता तो फरिश्ते बहुत है। और इत्तफाक हुआ रिसेंटली अल्लाह ताला के घर को देखने का, जब आप तवाफ करने वालों को देखते हैं, जब आप सही करने वालों को देखते हैं, मस्जिदों में भाग भाग के नमाजें पढ़ने वालों को देखते हैं, तो अपना आप ऐसे लगता है मक्खी की नोक, मेरी नमाज से अल्लाह को क्या मिलना है, इतने पढ़ रहे हैं, मेरी अल्लाह के लिए इबादत क्या है, अल्लाह की तो इतनी कर। और ये तो हमें जमीन के चंद लोग दिखते हैं ना, चंद लाख फरिश्ते, जमीनों आसमान कायनात, और जब कभी आप यूनिवर्स की कोई वीडियो देखते हैं तो आप कहते हैं शर्म कर अपने ऊपर, इतने सैयारे सितारे, इतनी गैलेक्सीज कहकशाएं अल्लाह के हुक्म पे जल रही हैं, तो तेरी क्या औकात है? इस जमीन के अगर ग्लोब में देखे तो मैं और आप एक नुकता भी नहीं है, फिर अपनी बातें कुछ नहीं लगती। यानी जब सिर्फ इबादत होती तो फरिश्तों ने तो कह दिया था कि अल्लाह नवाना सब भी हो बेहमदी का वनुकदी सुलक, पहले हम तेरी तस्वीरें भी करते हैं, हम तेरी बड़ाई बयान करते हैं, ये क्या इंसान को बनाने की हिकमत थी? तो अल्लाह ने क्या फरमाया था? इन्नी आलमु मा ला तालमुन, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और वो क्या था? कि इंसान सिर्फ इबादत नहीं करेगा, ये तस्खीरे कायनात का काम भी करेगा, ये दुनिया में मेरा दीन नाफिज करेगा। देखिए पहला जुमला इंसान के लिए कुरान में क्या आया है, वह इस काला रब का इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, मेरा और आपका तारुफ इस कुरान में लफ्ज खलीफा से हुआ, उसके बाकी सब मानी छोड़ दें, जरूरत नहीं इस वक्त, लेकिन एक मानी उसका यह कि दुनिया में अल्लाह के निजाम को नाफिज करने वाला। आज हमारी जिंदगी दो धारी जिंदगी है। इवन जिनको बहुत नेक समझते हैं तो उनकी नेकी कहाँ तक अमूमन रुकी होती है? 5 वक्त नमाजी, दाढ़ी भी है माशाल्लाह, ये भी अल्लाह जरूरत दे, ये कम लोगों की होती है। हर साल उम्रा, रमजान के रोजे, लंबी लंबी इफ्तारियां, सदका खैरात और टू मैनी थिंग्स। आज हमारी दीनदारी कहाँ आ जाती है? सिर्फ इबादत की हद। औरत है तो पर्दा, निकाब, हिजाब, वेरी गुड, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन असल बात के दीन की हदें ना टूटे। अल्लाह का निजाम हमारे घरों में, हमारी शादियों में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे जीने मरने में दिखे। ये दीन थोड़ा सा पीछे है। दो दीन साथ साथ हमें अपने माशरों में दिख रहे हैं हर वक्त, एक अल्लाह का भेजा हुआ दीन और एक वक्त और माशरे का दीन। मेरा खानदान ये चाहता, मेरी राह घर वाले ये पसंद करते, मैं ये चाहती हूँ बिकॉज बिकॉज। और आप देख लीजिए, शादी होती है हम पहचाने ही नहीं जाते, कारोबार में एक मर जाता है वो कहता है कि ठीक है मैं 5 वक्त नमाजी हूँ लेकिन दैट्स इट। मैंने आगे भी वाक्य सुनाया था कि एक दफा किसी का बच्चा अगवा कर लिया गया, यंग बच्चा। आपको पता है कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं हमारे मुल्कों में, अल्लाह सबको बचा के रखे। उस, ये बहुत पुरानी बात है, मैं खुद उन दिनों में कराची थी जबकि ये बात सुनी हुई है, आज से 10-15 साल पहले की बात है। तो कहते हैं कि 2-3 दिन बाद खबर मिली, फोन आ गया कि भाई अपना बेटा लेना है तो 5 लाख रुपए लेके उधर आ जाओ। 5 लाख उस दौर के आज के 5 करोड़ है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान में जितनी तेजी से मनी, आपने देखा कि उसका चेंज हुई है वैल्यूज। खैर, वो घर वालों ने जैसे तैसे जमा करने थे, कर करा के उन्होंने जिस जगह कहा था वहां भेजा किसी को कि जाओ और छुड़ाओ। कहते जब वहां घर गए, दरवाजा नॉक किया तो घर में से किसी खातून ने डोर खोला और कहा कि आप ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, तो वो अभी आते हैं कोई भी जो है। वो जो भी साहब थे वो जाके बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, बारिश यानी एक बुजुर्ग टाइप शख्स अंदर ड्राइंग रूम में आए, बहुत अच्छे तरीके से मिले, डिसेंट तरीके से। कहते साहब आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी। कहा हाँ। आपसे मेरी बात हुई थी? हाँ। आप किधर थे? कब नमाज पढ़ने गया था। कहा आप मस्जिद में नमाज पढ़ के आए हैं अभी? हाँ। कहा अच्छा, और आप एक तरफ नमाज और माशाल्लाह आपका चेहरा सुन्नत का, तो ये क्या चक्कर है जो आपने पैसे मांगे? कहा देखो ये नमाज, ये हमारा दीन है, और ये तुमसे पैसे जो लेने, ये हमारा बिजनेस है। ये दो धारी रुख नहीं होता जब सच्चा दीन दुनिया में आता है। शायद आप में से कोई मेरे इस दर्द को महसूस कर सके। आज ये दर्द, हर साहिबे दर्द इस चीज को महसूस कर रहा है, अमली जिंदगी में, तर्ज़े जिंदगी में, मईशत, माशरत, शादी ब्याह, तरबियत में, हम पूरा दुनिया वालों के साथ चल रहे हैं। वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्न से मतलब ये नहीं है वेस्ट में रह रहे हैं, वल्लाही आज पाकिस्तान के गांव में भी वेस्ट है। मीडिया ने सारे मरहले आसान कर दिए, बल्कि यहां हमें रहते हुए तो थोड़ी सी कुछ शर्म होती है इस बात की कि घरों में बैठे हैं। और मैंने जो तड़प और तकलीफ माओं के दिलों में वेस्ट में रहते हुए देखिए, वो अपने मुल्कों में नहीं देखी। यहाँ के माँ बाप परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, इनको कैसे बचाएं। यहाँ वल्ला ही एफर्ट्स ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि जितनी गंदगी है उतना, जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे पुल करने की तभी बचेंगे। लेकिन ओवरऑल हरम में, खाना काबा के पास बैठे बच्चों को मैंने वीडियो गेम्स खेलते देखा। माँ बाप ले भी जाते हैं ना, कैन यू बिलीव कि आज हमारा दिमाग इस तरह सुन कर दिया दुनिया वाली चीजों में कि हम नमाजों के दौरान भी हो सकता है कि अपने मैसेज गिन रहे हो। अल्लाह ने दुनिया की तरक्की दी है सबको, ये रिसर्चेस। अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को हमारे काम पे लगाया कि तुम आईफोन बनाओ और मुस्लिम उसमें खूबसूरत किस्म के आई एप्स बनाएं और दुनिया को कुरान दें और कुरान से काम करें। हो रहे माशाल्लाह काम, वो कर रहे, फायदा चंद लोग ले रहे हैं, लेकिन बात हो रही है अमूमियत की। अभी आज मैंने जो कोशिश की ना, वो ये सही है कि हम जो इबादत करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं, क्या इसका कोई इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट हमारी अमली जिंदगी में आना चाहिए? हम रोजे का असल तो समझे, वल्ला ही हमने नहीं समझी। हमने, सच बात है वही है, रोजे का मतलब यह है कि खाना वही है लेकिन बस टाइम ड्यूरेशन जरा बढ़ा लो, बल्कि वो खाना है जो आम दिनों में भी नहीं खाते। तो हम सब सोचे, हर साल रमजान आता है और बस हमें क्या सिखा के जाता है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम जिस दुनिया में इस वक्त जी रहे हैं इसके अगले वक्तों में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारी नस्लों को, जो चैलेंजेस दरपेश हैं। मैं कहती हूं अगर आज के दौर में मैं और आप रोजे की असल समझ जाए ना, तो ये जो गंदगी का तूफान है ना इर्द गिर्द, जिसका हमें गम है कि हमारे मर्द और हमारे बच्चे और हमारी बेटियां इसमें इंडल्ज ना हो जाए, शऊर के रोजे रखवा लें। एक रमजान ऐसा गुजर जाए आपके बच्चों का کہ جس میں شعوری طور پہ روزہ رکھ لیں کہ لعلکم تتقون، پھر آپ کو ان کی چوکیداری نہیں کرنی پڑے گی کہ بچے گھر ہیں تو میں گھر ہوں، بچے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو میں سر پہ بیٹھوں. نیور، ہم کبھی ایسی پابندیاں لگا کے اپنے بچوں کو بچا ہی نہیں سکتے. یہ تو ہم نے ان کے اندر دیواریں کھڑی کرنی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، کون سر پہ تھا ان کے باپ یا ماں کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی؟ پردیس بھی ہے، تنہائی بھی ہے، غلام بھی ہیں، پہل بھی عورت کر رہی ہے، انکار کرنے کا نتیجہ بھی نقصان کی صورت میں ہے، اور جوانی بھی ہے، گھر میں رہتے ہیں. 10 سے زیادہ عذر گنوائے ہیں مفسرین نے کہ حضرت یوسف کے پاس اتنے عذر یعنی ریزنز تھیں اس وقت اس عورت کی دعوت کو قبول کرنے کی، لیکن وہ بچپن کی باپ کی تربیت نے روک لیا. لولا را برہان من ربی، ایک برہان تھی. اچھی تربیت بچوں کی گئی ہو، ان کی نظروں کی حفاظت بچپن میں کی گئی ہو تو وہ بچ جاتے ہیں. اسی طرح ایک آخری واقعہ سنا کے بات کو پورا کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، مرثد رضی اللہ عنہ، صحت مند بھی تھے، چوڑے چکلے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو یہ کام دیا کہ مدینہ میں جو مسلمان آ چکے ہیں ہجرت کر کے، کچھ لوگ ابھی بھی مکہ میں ہیں، بوڑھے، کمزور، ہینڈی کیپڈ بچے، آپ ان کو مکہ والوں کی قید سے نکالیں. آپ دیکھیں کتنا ہارڈ جاب ہے نا، دشمن کے ٹیریٹری، دشمن کے علاقے سے اپنے لوگوں کو آزاد کرنا. خیر، یہ گئے. اس وقت کوئی لائٹس تو ہوتی نہیں تھی، لوگ رات کا سفر کرتے تھے چاندنی راتوں میں، کیونکہ صحراؤں میں کھلا چاند ہوتا تھا تو وہ ایک قسم کا نائٹ بلب کا کام کرتا تھا. خیر، یہ گئے مکہ کی طرف. شہر کی فصیلیں ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھی تاکہ دشمن آئے یا کچھ آئے تو پتہ لگے. مرثد جب شہر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیوار پھلانگی. جب یہاں گئے تو ان کو دور ایک عورت کا سایہ دکھا، تھوڑا سا فاصلہ قریب ہوا، اسی طرف سے آواز آ گئی، یا مرثد، او مرثد، اہلن و سہلن، ویلکم، بتندن علیلن. آواز سے پہچان گئے کہ یہ اناق ہے، ان کی دور جاہلیت کی محبوبہ، اسلام سے پہلے ان کے تعلق تھے ان سے. اور اب رات کو وہ عورت ان کو دیکھ کے خوش ہو گئی ہے. لیکن مرثد کیا بولتے ہیں؟ کہا کہ یا اناق، چلی جا، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا اور اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا. جو ہی اس عورت نے یہ بات سنی کہ یہ میری دعوت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، عورت کو تو بہت چوٹ پڑتی ہے جب مرد اس کی دعوت نہ قبول کرے، اس نے شور مچا دیا، او بستی والوں، دیکھو یہ تمہارے قیدی اڑا کے لے کے جا رہا ہے. بستی والے اٹھے، خیر مرثد نے جان بچائی، اندھیروں میں چھپتے چھپاتے واپس مدینہ آ گئے. مدینہ آئے تو اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، کیا میں اناق سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں کوئی نفرت نہیں تھی، ابھی بھی نرم گوشہ تھا. زنا کی دعوت ٹھکرائی لیکن حلال شادی کی بات کی، تو اس پہ قرآن کی دو آیتیں مختلف ہیں، سورہ بقرہ کی بھی ہے، لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن، اور اسی طرح سورت نور میں آتا ہے، الزانی لا ینکح الا الزانیہ، یعنی منع کر دیا گیا. اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ مرثد کے پاس اناق کی دعوت قبول کرنے کا کتنا سنہرا موقع تھا. نمبر ایک، یہ پردیس میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کافروں کے ملک میں گئے ہوئے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو جی ایسے چلتا ہی ہے، ایک معروف جملہ ہے کم پڑھے لکھے لوگوں کا. پھر صحت مند، جسمانی اسٹرانگ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی لوگوں کو کام وہی دیتے تھے جو وہ کر سکے. پھر رات کا وقت اور چاندنی راتیں جو ویسے ہی جذبات کو ابھار دیتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، پہل عورت کر رہی ہے، یہ بھی مردوں کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. ہم کیا کریں جب ہمیں بلاتے ہیں تو ہم صبر کیسے کریں؟ پھر پرانے تعلقات بھی ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کی دعوت نہ قبول کی تو یہ میرا راز کھول دے گی. اتنے عذر موجود ہیں، لیکن وہاں مرثد کو کس چیز نے روکا؟ لعلکم تتقون، ان کے نفس کے تقوے نے. یہی مقصد اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کا دیا، اور ایک ہی جگہ پہ بس رمضان کا ذکر ہے، قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 183.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ کیے گئے تھے. یعنی اتنا نہ رو کہ یہ صرف مسلمانوں پہ فرض ہے. اور آج حیرت ہوگی آپ کو سن کر اس بات کو، کہ آج ہمارے بچے جب سکولوں میں روزے رکھ کے جاتے ہیں या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में आप लोग जाते होंगे तो कई गोरे यानी क्रिश्चियन ज्यूज उन पर रहम खाते हैं, और कई लोग सिर्फ इस पे गिल्टी फील करते हैं, वो हम मुस्लिम हैं, हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम रोज़ा रखते हैं। तो याद रखिए कि रोज़ा सिर्फ इस्लाम में नहीं है, मिन कबलिकुम, हज़रत नूह से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की उम्मत में रोज़े थे, बल्कि पहलों के रोज़े तो ज़्यादा सख्त थे। तो यहूद नसारा आज जैसे लगता है ना कि उनके जहन में मज़हब में रोज़ा ही नहीं, उनका भी रोज़ा था, अमल करना छोड़ा तो ऐसे लगा कि है ही नहीं। आज मुसलमानों में भी यही हालात होते जा रहे हैं दिन ब दिन कि जब हम अपनी बातों पे अमल नहीं करते तो यही होता है।
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب إلينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين سمع.